नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप जारी, अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया। चार विश्वविद्यालयों में नए कुलपति नियुक्त किए गए, रविन्द्र कुमार नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति बने। पिछले साल अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ 3000 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई, जुर्माने के रूप में 9 करोड़ रुपए की हुई वसूली। और मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा, प्रदेश में जल्द ही ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 30 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। 5.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ समस्तीपुर का पूसा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के मौसम के मिजाज में बदलाव आ रहा है। आज से पूर्व हवा चलने की संभावना है, जिस कारण लोगों को कनकनी से राहत मिलेगी। हवा के रुख बदलने से प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया, अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हो सकती है।
मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश के तापमान में इस दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात चौथे दिन प्रदेश के पश्चिमी भाग में आकाश मेघ आच्छादित रहने एवं दक्षिण पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों में बहुत हल्की वर्षा की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया विभिन्न वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जीनोमिक्स डाटा कंक्लेव के लिए एक वीडियो संदेश में कहा, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट देश के जैव प्रौद्योगिकी परिदृश्य को परिभाषित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत को जैव अर्थव्यवस्था आधारित बनाने के लिए 21वीं सदी में जैव प्रौद्योगिकी और जैव ईंधन का समन्वय महत्वपूर्ण आधार है।
बायो इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गति देती है, इनोवेशन को अवसर देती है। मुझे खुशी है कि बीते 10 वर्षों में देश की बायो इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ी है। साल 2014 में जो बायो इकोनॉमी $10 बिलियन की थी, वो आज $150 बिलियन से ज्यादा की हो गई है। भारत अपनी बायो इकोनॉमी को नई बुलंदी देने में भी जुटा है।
श्री मोदी ने जीनोम इंडिया डाटा जारी करने की सराहना की तथा इसे अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।
बीते 10 सालों में रिसर्च और इनोवेशन के लिए पढ़ाई के हर स्तर पर बहुत जोर दिया गया। आज 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब में हमारे स्टूडेंट्स हर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नौजवानों के इनोवेटिव आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में सैकड़ों अटल इंक्यूबेशन सेंटर बने।
राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने 4 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की है। राजभवन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संजय कुमार को मुंगेर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। वहीं विवेकानंद सिंह को पूर्णिया विश्वविद्यालय और रविन्द्र कुमार को नालंदा खुला विश्वविद्यालय राजगीर का कुलपति नियुक्त किया गया है। डॉक्टर इंजीत सिंह को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। उप मुख्यमंत्री सह खनन और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पिछले साल अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के तहत 3,611 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान लगभग 9 करोड़ रुपए की वसूली जुर्माने के रूप में हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में सबसे अधिक गिरफ्तारी नवादा जिले में 38 व्यक्तियों की हुई है। इसके साथ ही सभी जिलों से अवैध खनन में शामिल 815 वाहनों को भी जब्त किया गया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि ई ऑफिस लागू होने से सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के साथ कार्य की गति बढ़ेगी। श्री मीणा ने कहा कि इस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटलीकरण और बदलावों को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। नीतीश मंत्रिमंडल का खरमास के बाद विस्तार होने की संभावना है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा से नए चेहरे को जगह मिल सकती है। वहीं भाजपा के जिन मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग है उन्हें कम कर कैबिनेट में शामिल होने वाले नए मंत्रियों के बीच बांटे जाएंगे। कई विभागों के मंत्रियों के बदले जाने की संभावना है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी।
देखिए ऐसा है ना कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही है, इसमें तो कहीं कोई ये नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और खरमास के बाद निश्चित रूप से इस पर चर्चा चलेगी। ये तो विस्तार होना ही है और खरमास के बाद इस पर चर्चा भी चलेगी।
बिहार विधान परिषद की एक रिक्त सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए की ओर से जदयू के ललन प्रसाद ने अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस सीट के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 13 जनवरी है। 14 जनवरी को नामांकन पत्रों की जाँच होगी जबकि 16 जनवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। यदि किसी और उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया तो 16 जनवरी को ललन प्रसाद की जीत की घोषणा कर दी जाएगी। यदि किसी और उम्मीदवार ने नामांकन किया तो मतदान 23 जनवरी को होगा। गौरतलब है कि राजद के सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद इस सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर भी जा सकते हैं। राज्य के किसानों तक खेती, मौसम और बाजार से जुड़ी सूचनाएं समय पर पहुंचाने के लिए कृषि रेडियो की शुरुआत पटना में हुई। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए वरदान साबित होगा। श्री पांडे ने कहा कि इसके माध्यम से किसानों से फीडबैक लिया जा सकता है, साथ ही कृषि कार्यों से जुड़े उनके सवालों का जवाब भी दिया जा सकता है।
तो दोस्तों, खेती आज से एक परंपरा नहीं बल्कि एक विज्ञान बन चुकी है और इस विज्ञान को समझने के लिए आपको चाहिए सही जानकारी सही समय पर। तो आइए इस कार्यक्रम के जरिए हम सब मिलकर बनाते हैं अपनी खेती को और भी आसान और फायदेमंद, और साथ ही सुनाएंगे किसानों की सफलता की कहानियाँ जो आपको देगी नई उम्मीद और नई ऊर्जा।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भारत नेपाल सीमा क्षेत्र का दौरा किया और भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB 41वीं बटालियन के कार्यक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सीमा पर चौकसी बरतने और घुसपैठ पर रोक लगाने के निर्देश दिए। श्री राय ने IG सुधीर कुमार और SSB के महानिदेशक अनुपमा निलेकर समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की। एनडीए 15 से 22 जनवरी तक पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और गोपालगंज समेत 10 जिलों में सम्मेलन करेगा। यह सम्मेलन एनडीए के घटक दलों के बीच समन्वय बनाने और कार्यकर्ताओं को एक साथ चलने के लिए प्रेरित करेगा। एनडीए के दल आपस में समन्वय के लिए संयुक्त प्रेस वार्ता से लेकर अन्य कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। देश में HMPV वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रदेश में भी वायरस संक्रमण को रोकने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में तैनात महामारी रोग विशेषज्ञों का एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया है जिस पर इस बीमारी से जुड़े अपडेट साझा किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारी पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इधर एम्स नई दिल्ली के इंटरनल मेडिसिन विभाग के डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा कि HMPV की तुलना COVID-19 से नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह वायरस पुराना है।
ये वायरस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और स्टडीज ने ये भी दिखाया है कि बाय द एज ऑफ 10 ईयर्स बच्चों में इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऑलमोस्ट 100% बच्चों में हो सकता है। हमारे हॉस्पिटल्स में कोई ऐसे केसेस बढ़े नहीं है जो नॉर्मल इस सिचुएशन में इस साल के इस समय में जो केसेज आते हैं, जो नॉर्मल कोल्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा उस टाइप के पेशेंट्स वही हैं और इनमें मैक्सिमम कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय उच्च पथ NH और राज्य उच्च पथ SH के किनारे लावारिश पड़े वाहनों को जब्त किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में सभी जिला परिवहन अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा कि सड़कों के किनारे खराब या लावारिश पड़े बसों, ट्रकों और अन्य वाहनों को जब्त किया जाएगा और उन्हें वहां से हटाया जाएगा। इस कार्रवाई अगले महीने से शुरू हो जाएगी। राजधानी पटना में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही मैदान में गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल शुरू हो गया है। गांधी मैदान को 4 जोनों में बांटकर निगरानी की जा रही है। यहां अस्थायी थाना, नियंत्रण कक्ष और 18 वॉच टावर लगाए जा रहे हैं ताकि समारोह में आने वाली भीड़ को व्यवस्थित बनाए रखा जा सके। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस के दिन 128 सीसीटीवी कैमरों से मैदान की निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा समारोह के दौरान सभी गेट पर दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है जो 20 जनवरी तक चलेगी। इस परीक्षा में 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। सीबीएसई ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। गौरतलब है कि यह परीक्षा 14 और 15 दिसंबर को आयोजित की गई थी। पूर्व मध्य रेलवे पाटलिपुत्र और बलिया के बीच आज से 31 मार्च तक विशेष ट्रेन का परिचालन कर रहा है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पाटलिपुत्र बलिया पैसेंजर स्पेशल ट्रेन पाटलिपुत्र से प्रतिदिन सुबह 8:15 बजे खुलेगी और दोपहर बाद 12:45 बजे बलिया पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन 1 बजे बलिया से खुलेगी और 5:55 पर पाटलिपुत्र पहुंचेगी। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को तरजीह देते हुए लिखा है, भारत पूरी करेगा प्रतिभा की मांग। दैनिक जागरण ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, आरक्षण से किसी को बाहर करना सरकार और विधायिका का काम। दैनिक भास्कर ने मौसम की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, 30 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे, पटना का तापमान 9.5 डिग्री। प्रभात खबर ने बिजली दरों से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, कंपनियों ने दिया प्रस्ताव, सुबह शाम और रात के लिए अलग अलग होगी बिजली दर। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, बीपीएससीपीटी मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट। आज अखबार लिखता है, बाजारों में खूब चल रहे हैं 500 के नकली नोट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप जारी, अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया। 4 विश्वविद्यालयों में नए कुलपति नियुक्त किए गए, रविन्द्र कुमार नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति बने। पिछले साल अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ 3000 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई, जुर्माने के रूप में 9 करोड़ रुपए की हुई वसूली। और मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा, प्रदेश में जल्द ही ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।